ओम शांति। हजारों वर्ष पहले एक बहुत ही निपुण और युवा चित्रकार था। वो इतने सुंदर चित्र निकालता था कि दूर दूर तक उसका नाम था और युवा था। एक बार उसके मन में यह संकल्प आया कि ऐसे किसी व्यक्ति का चित्र निकालूं, ऐसा कोई चित्र निकालूं, ऐसी कोई तस्वीर खींचूं जिससे दिव्यता झलकती हो, निरागसता, निष्पाप भाव, जैसे कि कोई देवता हो। ऐसे किसी व्यक्ति की उसने तलाश चालू की कि जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, और ऐसे व्यक्ति का उसे चित्र निकालना था जिसको देखकर इस जहां से बुद्धि कहीं दूर अज्ञात की ओर चली जाए। और उसने खोज आरंभ की, साधुओं से मिला, संतों से मिला, योगियों से मिला, परंतु किसी के भी चेहरे पर वह दिव्यता, वह तेज, वह आनंद का भाव, वह बालक सी निरागसता नहीं थी। और एक दिन अचानक जंगलों से वो जा रहा था तो उसने देखा एक चरवाहा गाय, बैल, भैंस, बकरी चराने वाला, ऐसा एक शेफर्ड। उसने उसको देखा जो कि बहुत युवा था, और उसको निश्चय होगा कि यही वो चेहरा है जिस चेहरे पर इतनी दिव्यता है, इतनी मासूमियत है, इतना इनोसेंट भाव। यही वो चेहरा है जिसमें दिव्यता झलकती हो, वही डिविनिटी इस चेहरे पर है। और उसने उस युवा चरवाहे से कहा कि मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है। और कई दिन उसने लगाए पर एक ऐसा सुंदर चित्र बनाया कि जी वो चित्र इतना प्रसिद्ध होने लगा कि गांव गांव में, हर घर में वह चित्र जैसे टंगा हुआ रहता था। इतना वह चित्र प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसमें वैसी ही दिव्यता थी, एक पवित्र भाव था, एक निर्विकारिता थी। ऐसा निर्विकार चेहरा, विकार जैसे स्पर्श भी नहीं हो सकते वहां। और वो चित्रकार और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। 20 वर्ष गुजर गए, चित्रकार बूढ़ा हुआ, और इन 20 वर्षों में जीवन की कुछ कड़वाहट का भी सामना करना पड़ा। वो एक समय था जब उसने ऐसा चित्र निकाला था जिससे दिव्यता झलकती हो। अब उसके मन में संकल्प आया कि मनुष्यता केवल दिव्यता नहीं है, एक दूसरा पहलू भी है, एक दुष्ट भाव भी है। और सोचता है मैं अभी किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाऊं जो संपूर्ण घृणा स्वरूप है, जो संपूर्ण पाप है, जो संपूर्ण साक्षात विकर्म है, जिसे देखते ही नफरत जाग उठे। क्या ऐसा भी कोई चित्र है? पागल खानों में घूमा, वेश्यालयों में घूमा, शराब खानों में घूमा, क्योंकि उसे वैसा चित्र बनाना था जहां पर जो कुछ भी नकारात्मक है वो सब कुछ है, कहीं नहीं मिला। फिर भी ढूंढना चालू था और एक दिन एक कारागार, एक कारावास, जेल में पहुंचा, बंदी गृह में, और वहां एक व्यक्ति को देखा जिसने 7 हत्याएं की थी और अभी 1 हफ्ते के बाद ही उसे फांसी होने वाली थी। उसे देखते ही जैसे साक्षात घृणा का अनुभव होता था। और उस चित्रकार ने सोचा कि हाँ, यही वो व्यक्ति है, जब तक मैं इसका चित्र न बना लूं तब तक मुझे चैन नहीं, क्योंकि एक चित्र वो था जो युवावस्था में बनाया था और उस अपराधी का वो चित्र बनाता है और बनाने के बाद इतना सुंदर वो चित्र बनता है कला की दृष्टि से, और वो साथ साथ अपने वो पुराना वाला चित्र भी लाया था उसने। दोनों को देखकर खुश होता है चित्रकार, कला की दृष्टि से दोनों ही अप्रतिम, एक में सौंदर्य तो दूसरे में नफरत और घृणा, और वो जब देखकर खुश होता है पीछे से रोने की आवाज आती है तो देखता है कौन रो रहा है। वह अपराधी रो रहा था, उसको पूछता है भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो अपराधी कहता है बीस वर्ष पहले तुमने जिस चरवाहे का चित्र निकाला था वो मैं ही हूं, और इस 20 वर्ष में जीवन की एक कैसी यात्रा मैंने कर ली, कहां वो अतिशय पवित्र स्वरूप और कहां अब मैं पहुंचा हूं, इतनी घृणा से भरा हुआ, इतनी नफरत से भरा हुआ, इतने विकर्मों का बोझ। ये कहानी किसकी है? कहां वो 16 कलाओं से युक्त देवता, कहां वो निर्विकारिता, कहां वो दिव्यता, कहां वो पवित्रता? और इन 5000 वर्ष में हमने भी एक कैसी यात्रा तय कर ली है, कहां हम आ गए? परंतु सौभाग्य है उस अपराधी का, यह सौभाग्य न था पर हमारा है। दोनों ही चित्र हमारे भी सामने है पर एक तीसरा भी चित्र हमारे सामने है। हमारे इस देह में रहते ही भगवान का इस सृष्टि पर आगमन, यात्स देही यात्स जन्मी, इसी देह में और इसी जन्म में भगवान मिल गया और नवजन्म हुआ ब्राह्मण। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। आज की मुरली कौन किसको देख रहा है? आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने पावन बच्चों को देख रहा है। कैसी दृष्टि है उसकी? वो अपने हमारे उस असली स्वरूप को देखता है, हमारे पतित स्वरूप को नहीं देखता। कैसी टेक्निक है उसकी पढ़ाने की, कैसा तरीका है उसका? आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। इस जन्म की विशेषता ही क्या है? पवित्रता। ब्राह्मण माना ही पवित्र जीवन, जीवन सदा के लिए होता है, थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन अर्थात सदा। तो बाबा आज ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो पावन है और जिनके जीवन की विशेषता क्या है? पवित्रता है। पवित्रता ही जीवन की विशेषता है, पवित्रता ही इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ही निज धर्म है, पवित्रता ही स्वधर्म है, पवित्रता ही इस जीवन का जीवदान है, पवित्रता ही इस जीवन का श्वास है, पवित्रता ही इस जीवन की धड़कन है। आज बाप दादा उस यंत्र को देख रहे हैं कि कितना जीवन में पवित्रता को अपनाया है। क्या देख रहे हैं? कितना जीवन में पवित्रता को अपनाया है। क्या मापदंड है पवित्रता अपनाने का? क्या कहा? सभी ने मुरली सुनी है आज, क्या कहा? मापदंड क्या है? चार पेज की मुरली है। क्या मापदंड है? सुख और शांति। यदि जीवन में सुख और शांति का अनुभव है तो ही कहा जाएगा पवित्रता है। केवल नारे नहीं, अनुभव। जीवन में सुख और शांति का अनुभव। सुख की शैया, शेष शैया नहीं, विकार भी मित्र बन गए हैं। विकार से द्वंद बंध हुआ है, क्योंकि जाना निज स्वरूप ही पवित्रता है, स्वधर्म ही पवित्रता है, इस ब्राह्मण जीवन की रियलिटी ही पवित्रता है। प्यूरिटी ही रियलिटी, प्यूरिटी ही लॉयल्टी, प्यूरिटी ही ऑनेस्टी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही एबिलिटी है, प्यूरिटी ही कैपेसिटी है, प्यूरिटी ही ऑनेस्टी है, प्यूरिटी ही सिंप्लिसिटी है। इस ब्राह्मण जीवन में आधार स्तंभ है पवित्रता। अगर पवित्रता को हटा लिया जाए तो ये भवन गिर जाएगा। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। गीत है, कल्प कल्प के भाग्य भवन की यह आधारशिला है। तो बाप दादा पोता मेल देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, किसने कितनी पवित्रता को धारण किया है, और उसका मापदंड है, उसका यंत्र है क्या? इंस्ट्रूमेंट, सुख और शांति। जहां सुख और शांति है, जहां पवित्रता है, पवित्रता की गोद में ही सुख और शांति खेलते हैं। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख की शैया, शांति के आसन पर विराजमान। यदि सुख स्वरूप के बजाय क्या और क्यों है, क्या और क्यों का तिलक, क्या और क्यों की उलझन, क्या और क्यों का व्यर्थ, तो वहां हलचल है। जैसे कोई चीज किसी की खो जाती है, उदाहरण दिया है बाबा ने कल की मुरली में, कल मेथड्स में बताया था, एग्जाम्पल मेथड। बाबा उदाहरण देते हैं मुरलियों में, हर चीज का एक उदाहरण। जैसे किसी की कोई चीज खो जाती है तो वो परेशान हो जाता है, क्या क्यों कैसे में आ जाता है। वैसे रूहानी स्थिति में यदि पवित्रता को खो दिया है, रूहानी स्थिति में, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, रूहानी स्थिति में यदि पवित्रता खो दी है तो भी क्या होगा, उलझन की शैया होगी, तो भी क्या होगा, हलचल होगी, तो भी क्या होगा, क्या क्यों के क्वेश्चन होंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं वैसा। ये पवित्रता की परिभाषा है, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी कहा है मुरली में। यहां तो संकल्पों की बात चल रही है, व्यर्थ भी अपवित्रता है, हलचल भी अपवित्रता है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं भी अपवित्रता है। ये जो संघर्ष है ये अपवित्रता है। हमारा ब्राह्मण जीवन कहीं ऐसे ही संघर्ष में तो नहीं बीत रहा। दिवस रात राम महायुद्धाता प्रसंग, अंतर बाह्य जगानी मन, दिन रात हमें युद्ध ही युद्ध है। तो संपूर्ण पवित्रता की बाबा ने परिभाषा दी है। यदि यह पवित्रता है बीच में और एक त्रिकोण खींचा जाए, बीच में पवित्रता, एक ट्रायंगल, तीन चीजें चाहिए परिभाषा के लिए। पहला चरण है स्व में पवित्रता का अनुभव, अर्थात स्व में सुख का और शांति का अनुभव, ये प्रथम। दूसरा व्यक्ति इस कोने पर दूसरों पर भी अपनी पवित्रता का प्रभाव डाल सकना, ये पवित्रता की परिभाषा है। और तीसरा इधर कौन है, प्रकृति, मनसा वृत्ति से, मनसा पवित्र वाइब्रेशन से पवित्र प्रकृति को भी पावन बनाने वाले, ये तीन चीजें यदि है तो संपूर्ण पवित्रता है। तो सबसे पहली चीज स्व में सुख का और शांति का अनुभव। उसमें कौन सी बात कही बाबा ने, विकार जो है वो छत्र छाया बन जाए, वो शेष शैया नहीं सुख की शैया बन जाए, विकार शत्रु नहीं मित्र बन जाए, वो लड़ाई समाप्त हो जाए, आत्मा उससे ऊपर उठ जाए, वह पवित्रता की स्थिति है। निरंतर सुख स्वरूप में रहना, सुख स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, उस स्वरूप में स्थित रहना। जैसे शेष शैया में दिखाया है विष्णु अनंतासन में, सागर की लहरें आ रही है परंतु वो कैसा है, शांत है। इतनी लहरें आ रही है, आवाज हो रहा है, बारिश भी हो सकती है कभी शिव सागर में, परंतु वो निश्चिंत है। यह पवित्रता की स्थिति है। सुख स्वरूप आत्मा हूं मैं, सुख स्वरूप आत्मा हूं, ये शब्द सभी ने सुने हैं परंतु क्या अनुभव किया है। एक ही संकल्प, केवल एक संकल्प कि मैं सुख स्वरूप हूं, आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है, परंतु किस अवस्था में इसे कहा जा रहा है। मैं शांत स्वरूप हूं। शांति की क्या परिभाषा है, क्या जंगलों में बैठे हुए वो ऋषि और मुनि शांत है, कौन शांत है, शांति की क्या परिभाषा है, क्या सब कुछ छोड़ देना, किसी आश्रम में जाकर बैठ जाना तो शांति मिलेगी, क्या संसार से वैराग्य ले लेना तो शांति मिलेगी, किसी देश का एक राजा था और उसने एक दिन आदेश दिया, मुझे शांति का चित्र बना कर दो। बहुत सारे चित्र आए और बहुत सारे चित्र बने, उसमें से दो चित्रों का चयन हुआ, दो चित्र राजा ने चुने। दो चित्रों से अब ये देखना था दोनों में से शांति किसमें ज्यादा दिखाई दे रही है। शांति का चित्र, मूर्तिमंत शांति, प्रत्यक्ष शांति का अनुभव हो ऐसा चित्र देखकर। तो पहला चित्र था जिसमें पहाड़ थे एकदम शांत, जिसमें नदी तालाब था एकदम शांत, सूर्योदय हो रहा था एकदम शांत, आकाश निरभ्र अंबर, कोई पंछी उसमें नहीं था, एकदम शांत। उसे देखकर ही मन शांत हो जाता था, ऐसा वो सुंदर चित्र था। और दूसरा एक चित्र था, वो भी शांति का ही चित्र था, पर उसमें ओबड़ खाबड़ एक पर्वत था, एक नदी वहां से आ रही थी, नदी भी बहुत उफान पर थी, जिसमें बहुत सारा जल बह रहा था, ऊपर से गिर रही थी नीचे, आकाश में काले काले बादल, गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, कहीं पंछी यहां वहां घूम रहे थे, आवाजें हो रही थी, ऐसा वो एकदम भयावह चित्र था। परंतु वो जो झरना वहां था, फेस युक्त झरना, उस झरने के पास ही एक चिड़िया का घोंसला था, बहुत चिड़िया अपने बच्चे को आवरण देते हुए शांति से बैठी थी, चारों ओर हलचल थी, परंतु वो चिड़िया शांति से बैठी थी। ये है पीस। पीस अर्थात सर्वत्र शांति, सर्वत्र आवाज, हलचल, कोलाहल, उस वातावरण में भी चित्त शांत, मन शांत। यह शांति की परिभाषा है। उस भीड़ में भी एकांत, और यह शांति तब हो सकती है जब पवित्रता संपूर्ण हो। तो स्वयं में सुख और शांति का अनुभव, तो अभी सभी दो मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे और उसी पवित्रता का और उसी सुख और शांति का अनुभव करेंगे। जब हम कहते हैं अलर्ट होकर योग में बैठे, तब शरीर भी इतना शांत हो जाए कि शरीर में कोई हलचल ना हो, पैरों की भी हलचल ना हो, उंगलियों की भी हलचल ना हो। यदि शरीर हिल रहा है और डुल रहा है तो उसमें आत्मा कैसे प्रतिबिंबित होगी? योग के अभ्यास में पहले शरीर की साधना है, इस शरीर को पहले साधना है। यहां तक कहते हैं ये जबान भी निश्चिष्ट हो जाए, तंग जो है एक जगह रुक जाए, तो ही तो योग का अनुभव। परंतु सहज योग के नाम पर हमने बहुत कुछ कर रखा है, सहज योग सहज योग सहज योग। चलो सहज योग तो है, चलते फिरते करना है, परंतु बैठकर भी करना है, परंतु आत्मा का वो अनुभव भी तो हो, तो कहीं जाके चलते फिरते भी हो सकता है। बैठकर ही आत्मा का अनुभव नहीं, शरीर ही खींच रहा है, कभी पैर खींच रहे हैं, उंगलियां खींच रही है, कभी सामान इधर से उधर, उधर से इधर, कभी उंगलियां ऐसी 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 ऐसी, तो कैसे अनुभव होगा? तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, चेतना को, बुद्धि को, मन को प्रकृति के मध्य में केंद्रित करेंगे। कुटी के भव्य भाल पर विराजमान, पवित्रता का वह तेज पुंज मैं हूं। एक संपूर्ण पवित्र आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, संपूर्ण पावन आत्मा, अपने ही पवित्र प्रकंपन मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। संपूर्ण मौन, वातावरण में संपूर्ण शांति, भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान मैं आत्मा एक तेजोमय पुंज हूं। संपूर्ण पावन, सुख की शैया पर विराजमान, मैं संपूर्ण सुख स्वरूप आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है, सब हलचल समाप्त मैं निज स्वरूप में स्थित हूं। मुझ आत्मा से मेरी समस्त देह में पवित्रता की किरणें फैल रही है और मेरा यह देह एकदम पावन हो चुका है। इंद्रियों की चंचलता नष्ट हो गई है, अंग अंग पवित्रता का यह दिव्य अनुभव, यही इस जीवन का जीवदान है। विश्व की सभी आत्माओं तक मेरे प्रकंपन प्यूरिटी की यह श्रेष्ठ धाराएं बह रही है, चारों दिशाओं में, चारों एक एक आत्मा पवित्रता का अनुभव कर रही है। मुझ आत्मा से यह दिव्य किरणें समस्त भूमंडल पर छा रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। तो पवित्रता की पहली परिभाषा है स्वयं में सुख का और शांति का अनुभव करना। जितना हमने स्वयं में सुख शांति का अनुभव किया है, क्योंकि संकल्प संकल्प को जन्म देगा। कल भी कहा था, जो संकल्प मन में उत्पन्न होता है वही संकल्प प्रकृति में जाता है, और आकर्षण का नियम कहता है कि वो समान संकल्पों को खोजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शांति का संकल्प, सुख का संकल्प, पवित्रता का संकल्प प्रकृति में जाएगा, वातावरण में जाएगा, रिएक्शन होगी संकल्प की और प्रकृति की और घटनाओं का निर्माण। जो जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है वो किसकी रचना है? हमारी। यदि दुख का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति दोषी नहीं है, ना ही परिस्थिति। उस व्यक्ति को भी वो कृत्य करने के लिए हमने ही बाध्य किया है, हमारे ही संकल्प कारणीभूत है। इसलिए एक एक संकल्प, बाबा ने कहा है सूक्ष्म चेकिंग करो तो निरंतर सुख और शांति का अनुभव। क्या, क्यों, कैसे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ये संकल्प यदि मन में उठ रहे तो शायद इस ज्ञान को नहीं समझा है। ज्ञान को बढ़ाओ। क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान कम है इसलिए संकल्प चल रहे हैं। इंक्रीज द नॉलेज, क्योंकि दृष्टिकोण केवल एक है। हम केवल अपने ही एक संकुचित ट्यूबुलर विजन से देख रहे हैं घटना को, जबकि उसमें बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है। ये ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है, पर हमें तो नहीं नजर आता है। कुछ कुछ सीन अकल्याणकारी दिखाई देते हैं, परंतु बाबा ने कहा है यह ड्रामा कल्याणकारी है। यह ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। इस ड्रामा में अकल्याण हो नहीं सकता। यह ड्रामा सत्य है, हर एक का पार्ट फिक्स्ड है। यह ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती। इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? एक्यूरेट है। और कैसा है? हीरो पार्टधारी। और कैसा है? इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? कैसा है? आज्ञाकारी। इस ड्रामा का हर एक्टर, संपूर्ण ड्रामा का, बाबा के बच्चों की बात नहीं चल रही है, फिक्स्ड है। और इस ड्रामा का हर एक्टर डिफरेंट है। हर ड्रामा, इस ड्रामा का हर एक्टर कैसा है? यूनिक है, निमित्त है। इस ड्रामा का हर एक्टर फिक्स्ड, इस ड्रामा का हर एक्टर अपना एक्ट कर रही है। इस ड्रामा का हर एक्टर विशेष है, अलग अलग पार्ट है, यूनिक है। और एक पॉइंट है पावरफुल, वो पॉइंट, हाँ, इस ड्रामा का हर एक्टर केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। सारे झगड़े समाप्त। इस ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है। कैसा पॉइंट है? पावरफुल, पावरफुल है ना? किसी का यहां कोई दोष नहीं। जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। हम सोचते हमारे जीवन में ये घटना क्यों हुई, ये होनी नहीं चाहिए थी, एकदम खराब घटना है, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्या लगता है माताओं को? बहुत ही खराब घटना, कहेंगे कितना बुरा बुरा बोलते हो, ये घटना इतनी खराब और होनी चाहिए थी? क्या कहेंगे? ये ड्रामा भगवान को पसंद है, ये ड्रामा न्यायकारी है, ये ड्रामा विविधतापूर्ण है। इस ड्रामा में अन्याय हो नहीं सकता। आत्माओं के जन्म जन्म के हिसाब यहां चुप्त हो रहे हैं। ड्रामा की ये सारी पॉइंट्स याद करना है तो स्थितियां चल रहेगी। फिर ये क्या, क्यों, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये व्यर्थ, ये उलझन, जैसे कुछ खोया है, परेशानी, हलचल, ये नहीं होगा। इसके लिए ड्रामा को पक्का करते रहना है। घटनाएं हो रही है, साक्षी होकर देखो और जानो। एक माता बाबा के पास आई थी और उसने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई है, ऐसा पाप मैंने कर दिया है कि क्या ये बदला जा सकता है। क्या हुआ? उसने बताया, जब यज्ञ भारत पाकिस्तान से भारत आया था 1950s में, तो हिंदू और मुसलमानों के झगड़े हुए थे। उसने कहा था कि मुसलमानों ने पूरे घर में आग लगा दी थी उस समय, और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, कुछ महीने के, और इतनी आग भड़क गई थी, मैंने अपने खुद को बचाने के लिए दोनों बच्चों को नीचे रखा और उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई और दोनों बच्चे मर गए। क्या इसे बदला जा सकता है? आप कहते हो ड्रामा कल्याणकारी है, क्या ये जो घटना है जो मेरे हाथ से हुआ था, क्या इसे बदला जा सकता है? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था, या आप क्या समझते हो? ये सीन अच्छा था? एक मां अपने दोनों ही बेटों को मार दे खुद को बचाने के लिए और बाद में पश्चाताप, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परंतु उसके बाद ही वो ज्ञान में आई। बाबा ने कहा, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। ये हो रहा है क्योंकि वो हुआ था, इसलिए उसके लिए पश्चाताप नहीं, स्टॉप। कहा है मुरली में, तिलक लगाओ। तिलक अर्थात स्मृति। क्या क्यों का तिलक नहीं, तीन बिंदी का तिलक, जो हुआ फुल स्टॉप। क्योंकि जो हुआ उसके लिए कितना भी सोचो, इस जो हुआ ना तो भगवान उसे बदल सकता है, ना प्रकृति, ना नियति, ना भाग्य, ना समय, कोई भी उसे वापस चेंज नहीं कर सकता, वही सीन ड्रामा में फिर नहीं आएगी। परंतु हाँ, एक 5000 साल बाद फिर आएगी, पर टाइम बहुत है 5000, इसके लिए शांति से रहो, बहुत लंबा समय है। परंतु घटनाएं जो घट रही है, सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी है। मैं ही कारणीभूत हूं और मुझे ही बदलना है। कोई दूसरा व्यक्ति बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, बाबा ने एक अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड ब्रैकेट कॉमा, ना स्थान बदलेगा, जिस स्थान पे हो वही रहना है, वही घर, वही ऑफिस, वही सेंटर, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे। जो पति है वही रहेगा, जो बच्चे हैं वही रहेंगे, जो सास ससुर है वही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, ना व्यक्ति बदलेंगे और ना ही परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना होगा। तुम बदल जाओ तो वो तीनों बदल जाएंगे, और यदि खुद को ना बदला और केवल स्थान बदल दिया, यहां एक रावण था वहां 10 रावण खड़े हो जाएंगे। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। इसलिए क्या, क्यों, कैसे, को करी तर्क बढ़ावे साखा, होई सोई जो राम रचि राखा, ऐसा समर्पण भाव, थाय विल शैल बी डन, तेरी जो इच्छा है वही होगी। इसलिए सुख स्वरूप के अनुभव के लिए प्रश्नों से पार, सुख स्वरूप के अनुभव के लिए जिस उलझनों में हम फंसे, बाबा ने कहा है यहां पर एक निशानी बताइए, पवित्रता, सुख शांति, और निशानी है हर्षित चेहरा। अपवित्रता, दुख अशांति, उलझन, खोया हुआ चेहरा, जैसे कुछ खोया है। और जब इस ब्राह्मण जीवन में यदि पवित्रता खो जाए, बाप का बनने के बाद यदि पवित्रता खो जाए, बाप का बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा ली, और उसके बाद में विकर्म किया तो उसकी सजा अज्ञान में एक का एक गुना और ज्ञान में एक का 100 गुना, चाहे पाप या पुण्य। अज्ञान में थोड़ा पुण्य करो तो उतना मिल जाएगा, ज्ञान में थोड़ा पुण्य करो तो ज्यादा मिल जाएगा, परंतु पाप का भी वैसा ही है। वहां थोड़ी अपवित्र दृष्टि, थोड़ा सा पाप, यहां थोड़ी अपवित्र दृष्टि, बड़ा पाप। कैसा सौदा है, बाबा ने कहा ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, कौन बैठ कर देखता है किसने क्या पाप किया। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हारा तुम जानो, ये चलता कैसा है हिसाब, इसने ये पाप किया अब उसको ये मिलेगा, ये किया वो किया, कैसे होता है ये, कौन करता है, कौन है ये, बाबा करता है, कौन करता है, कैसे होता है मशीनरी, कौन ऑपरेट कौन करता है, कोई ऑपरेटर तो होगा, इसने ये काम किया फिर उसको ये मिलना चाहिए, अभी उसने वो किया, उसने इसने संकल्प में भी, यहां तो क्या क्यों, संकल्प की पवित्रता। बाबा ने आज कहा ना 4 प्रकार की 5 प्रकार की पवित्रता, संकल्प की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, बोल की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता और संबंध संपर्क की पवित्रता, 4 बताए। आज केवल संकल्प की चर्चा करेंगे, बाबा ने कहा आगे का जो है कभी बाद में सुनाएंगे, मुरली में है, पता नहीं बाद में कब आएगा, तो ये मुरली 82 की है, तब बाबा ने कहा ये बाद में बताएंगे। तो कैसे ऑपरेट होता है ये, मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम कैसा बना है कर्मों का, ऑटोमेटिक मशीनरी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। भगवान इस कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करते किसी के, मैं पतित को पावन बनाने आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, तुम्हारे धंधे में नुकसान हो रहा है, मैं ये सब करने नहीं आया हूं। बाबा ने क्लियर बता दिया मेरा एक ही काम है, मैं वही करता हूं, तुम्हारा पति ज्ञान में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, उसकी बुद्धि का ताला खोलने मैं नहीं आया हूं, मेरा एक ही काम है पतित को पावन बनाना, बस तुम्हारे हिसाब किताब तुम जानो। बाबा हमारा पति हमको बहुत सताता है, तुमने भी सताया होगा, यह साकार महावाक्य है बाबा के। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। यह संसार राम ने क्या कर रखा है, कर्म प्रधान, ऑटोमेटिक, विकर्म करो सजा पाओ, कर्म प्रधान। अभी अभी संडे में मुरली चली थी, कर्म योग, कर्म क्षेत्र, कर्म भोग, कर्मेंद्रिया, सब कर्म पर बाबा ने कहा था, आधार कर्म है, कर्म प्रधान है ये संसार, विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। ही डजंट इंटरफियर, वो इंटरफियर नहीं करता है कहीं पर भी। तो सुख स्वरूप, शांति स्वरूप अर्थात संपूर्ण पवित्रता, अगर ये दोनों में कहीं पर भी कमी है, अशांति लग रही है, व्यर्थ चल रहा है, समझना कहीं ना कहीं पवित्रता का खंडन हो रहा है, मन में हलचल है, एंग्जाइटी, फियर, क्वेश्चंस, क्या करूं क्या नहीं करूं, डर कुछ हो ना जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, डर, अज्ञात, भय, यह भी अपवित्रता है इस परिभाषा से, क्योंकि सुखमय शैया नहीं है वो, निश्चिंत सुखमय स्थिति अर्थात पवित्रता। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ हो ना जाए मेरे साथ, मैं बीमार पड़ गई तो, हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार को मिलने गए तो उसको देखकर लगता है मेरा ऐसा हाल हुआ तो, ये सब अपवित्रता की, पवित्रता बहुत सूक्ष्म है, बाबा ने कहा ना सूक्ष्म परिभाषा है, केवल ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, कल हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी, पर यहां तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता अर्थात शिवाचर्य और ब्रह्मचर्य, एक का बोल और दूसरे के कदम, एक के फुटस्टेप पर चलो और दूसरे बोल का पालन करो। आगे मुरली में प्रश्न है, सद्गुरु अर्थात चार संबंध है, शिक्षक और सद्गुरु। तो पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य, पवित्रता अर्थात ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा ने जो आचरण किया है, कदम पर कदम, अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण, तीन शब्द है हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में बाबा कहते हैं फॉलो फादर। अनुकरण, अनुकरण करना अर्थात मिमिक, नकल करना, अनुकरण, अनुगमन, उसके पीछे पीछे उसकी एक्टिविटीज, अनुसरण और अनुगमन। अनुसरण एक्टिविटी, उसका जो बिहेवियर है वैसा ही बिहेव करना, एज इट इज। तो अनुकरण, अनुगमन और अनुसरण, तीनों ही चीजें करनी है। किसका? ब्रह्मा, क्योंकि हाईएस्ट एग्जांपल सेट किया है यहां पर उसने, फॉलो करना है उसको। तो ये पवित्रता की परिभाषा है। तो ये पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण है दूसरों को पवित्रता का प्रभाव पड़े दूसरों पर और उनको सुख शांति का अनुभव हो। हमने कहा ये त्रिकोण है, त्रिकोण के बीच में पवित्रता, ऊपर स्व, इधर व्यक्ति, इधर प्रकृति। यदि हम स्वयं को अनुभव हो रहा है सुख और शांति का, परंतु हमारी वजह से दूसरों को नहीं हो रहा है, तो ये भी पवित्रता नहीं हुई। और उसके तीन कारण बाबा ने बताए हैं जिस वजह से दूसरों पर पवित्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन से कारण है वो जो बताएगा उसको अभी अभी इनाम मिलेगा। मुरली है तो देख भी सकते हैं। एक पॉइंट बोल दिया है, दूसरों की चीजें दिमाग में, ऐसा नहीं बोला है बाबा ने, बाबा के शब्द बता। पहला कारण, यदि किसी की कमजोरी और अशुद्धि बुद्धि में धारण की है तो, एक। दूसरा, यदि किसी के प्रति व्यर्थ भाव और अशुद्ध भाव है तो। और तीसरा, पवित्रता की खुद की ही परसेंटेज कम है तो। पहला लेंगे, पहला है दूसरों की कमजोरी को धारण किए हुए है, दूसरा झूठ बोलता है और हम क्रोध करते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। हम क्रोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सत्य से प्रेम है, वो झूठ क्यों बोल रहा है, परंतु हम क्रोध में हैं, वो भी तो विकार है। दूसरों की कमजोरी को हमने चित्त पर रखा है, चित्त में समा के रखा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। जब वो बीमार था तो हम उसको डॉक्टर, उसको हॉस्पिटल में मिलने गए थे, और हम अब बीमार है, अभी तक नहीं आया है, हमने शादी में ये दिया था, उन्होंने ये दिया है, बिल्कुल सस्ता हल्का, अभी तक बुद्धि में बातें याद है, पकड़ के रखी है बिल्कुल, जैसे कोई वायर है उसको जितना जोर से पकड़ता है तो यहां लल लल होता है पूरा, उसको छोड़ो और पकड़ के रखिए, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। अवसर की तलाश है कब वो हो जाए और हम उसके साथ भी वैसा ही करेंगे, है ना ऐसा। इसके लिए कल यहां कौन कौन थे, एक अभ्यास शाम में हमने किया था, आत्माओं को इमर्ज करना और माफ करना, आत्माओं को इमर्ज करना और माफी मांगना और धन्यवाद देना। ये जो भाव हमने अंदर पकड़ रखे हैं, कमजोरी पकड़ रखी है, तो जब किसी की कमजोरी को हमने धारण कर लिया है तो उसको हम सुख शांति का अनुभव नहीं करा सकते। शायद हम ही बाधा है, हमारे घर में जो लोग हैं वो ज्ञान में न आ रहे हैं, उसका कारण वो नहीं है, हम हैं। शायद हमने ही गलत ढंग से और गलत तरीके से इस ज्ञान को प्रस्तुत किया है। इसलिए उनके मन में वो विरोध भाव है। इसलिए दूसरों की कमजोरी को हमने अगर धारण कर रखा है तो उसका कल्याण नहीं कर सकते, एक। दूसरा, यदि किसी के प्रति व्यर्थ भाव मन में है, निगेटिव भाव है किसी के प्रति कि ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, फिक्स्ड आइडियाज है उसके बारे। अरे आपने सुना होगा डाकू पंचम सिंह, सुना है?
डाकू पंचम सिंह बहुत बड़ा डाकू था, अभी बहुत बुजुर्ग है शायद, पता नहीं शरीर छोड़ दिया है क्या, वो अभी ब्रह्मा कुमार है कई सालों से और सब जगह जाकर अपना अनुभव सुनाते हैं, कितने बड़े डाकू थे, फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया था सारे 500 डाकुओं ने मिलकर, कितनों की हत्या की थी, किसी किसी को जिंदा जला डाला था, ऐसा डाकू पंचम सिंह भी ब्रह्मा कुमार बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। इतिहास में अंगुलीमान का उदाहरण है, रत्नाकर डाकू का उदाहरण है जो वाल्मीकि बन गया, कैसे बहुत सारे उदाहरण है जो एकदम पतित अजामिल जैसे पापी थे वो भी चेंज हो गए, और हमारे घर वाले या आसपास वाले वो तो इतने पापी नहीं है, फिर भी हमने क्या सोच रखा है, ये नहीं आने वाले, बहुत कर लिया हमारी फिक्स्ड आइडियाज हो गई है, इनके पास जाके फायदा ही नहीं है, निगेटिव हो गए उनके प्रति हमारे मन, और हम सोच रहे हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूं, हम विश्व को सकाश देते पर आसपास वालों को बिल्कुल नहीं, ये आउट है उसमें, ये विश्व में नहीं है, उधर भूकंप हुआ बैठ के सकाश, उधर सुनामी आई यहां बैठ के सकाश, पर ये घर वालों का क्या, ये हमारी लिस्ट में ही नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में दिया तो मस्जिद में दिया कहावत है, सबसे पहले आसपास वाले इनका कल्याण करो। तो तीसरी पॉइंट है परसेंटेज में कमी प्यूरिटी की, आगे मुरली में कहा है 16%, 14% सतो प्रधान राज्य सतो राज्य, कहां जाना है पूछा है बाबा ने, अपनी प्यूरिटी के लेवल को बढ़ाना है, कहां प्यूरिटी भंग हो रही है, सबसे निचला स्तर है ब्रह्मचर्य काम विकार, क्या भी यह देह खींचता है, क्या भी इस देह को देखने की इच्छा है, क्या है इस देह में, मलमूत्र से भरा यह देह, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, यही इसकी वास्तविकता है, कलेवर केवल है, यह आवरण मात्र है, ब्यूटी इज बट स्किन डिप, इसके अंदर क्या है, इस चमड़ी को उखाड़ो कहां है सौंदर्य, वो तो भ्रामक चित्र प्रस्तुत किया है मीडिया ने, उपन्यासकारों ने और संसार के लोगों ने, परंतु इस देह में कोई सौंदर्य नहीं, सौंदर्य आत्मा में है, क्या इस देह को देखना है, क्या इस देह को भोगना है, बाबा ने कहा है तुमने सबसे बड़े पाप जो किए हैं काम विकार के कारण किए हैं, क्रोध से नहीं किए, लोभ से नहीं किए, मोह से नहीं किए, अहंकार से नहीं किए, आत्मा पतित बनी है काम के कारण, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, साकार महावाक्य है, बच्चे पवित्र बनो, जिस राह को छोड़ चुके हैं अब वो मार्ग हमारा नहीं, यदि ब्रह्मचर्य ही अखंडित नहीं तो पवित्रता का यह भवन भी नहीं बन सकता, इसलिए वो सारे मार्ग वो सारे लीकेजेस जहां से पवित्रता भंग होती है सबसे पहले उसको स्टॉप उसको रोक देना है, ताकि ऊर्जा वो जो घोड़ा होता है ना उसको यहां लगाते हैं से, ताकि इधर उधर ना देखे, इस संसार में देखने जैसा कुछ भी नहीं है, असार संसार है, अनित्यम असुखम लोकम, इसलिए संपूर्ण पवित्रता तो स्वयं में किसी की कमजोरी को धारण किए हुए ना हो, अरे सारा जीवन सारा सृष्टि ही बदलने वाली है तो क्या आत्माएं नहीं बदलेगी, हमने क्यों ऐसा समझा है, एक व्यक्ति है एक पति जो अपनी पत्नी को 20 साल तक परेशान करता है, मारता है रोकता है पवित्रता के लिए परेशान करता है, और एक दिन वह पति ज्ञान में आ जाता है, तो जब 20 साल वो पीड़ा कर रहा है 20 साल जब विरोध कर रहा है तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी, थी या नहीं थी कि अचानक बन गई अभी एक्स्ट्रा ऊपर से, तब भी देवकुल की ही थी। तो हर व्यक्ति को यही समझो कि ये देवता है, ये ब्राह्मण है, चाहे ज्ञानी अज्ञानी कोई भी, संसार की हर आत्मा देवकुल की आत्मा है। ये हमारा दृष्टि विजन हो तो उनमें परिवर्तन आएगा। हमारी ये दृष्टि हो बस, हम ये ना सोचे ये अज्ञानी है, ये पाप करते हैं, विकर्म करते, भ्रष्टाचार करते हैं, काम विकार के भोगी है, हम ये क्यों सोचे? हम ये सोचे कि ये भी देव कुल की आत्मा थी। हम भी क्या थे? बहुत पावन आत्मा थे क्या जब भगवान ने अपना बनाया, कि बहुत शुद्ध थे? कैसे थे हम? बाबा ने कहा मैंने तुम्हें डस्टबिन से उठाया है, एक मुरली में था तुम इतने डूबे हुए थे भक्ति में, तुम्हारा एक केवल बाल ही दिख रहा था, मैंने उस बाल को पकड़कर तुमको बाहर निकाला है। बाल बाल एक मुरली में बाल कहा है बाबा ने, साकार मुरली में। क्या उसने अगर ऐसा कर कह दिया होता, हम बाबा के पास आए और उसने कहा होता हे पापियों फिर आ गए, तो हम रुकते थे क्या? उसने क्या कहा? आ जाओ, तुम ही देवी देवता हो, तुम ही पवित्र थे। कितना पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव अप्रोच। क्या हमारा उन आत्माओं के प्रति है जो अज्ञान में इस समय कमजोरी को धारण कर रखा है, फिक्स्ड है और फैला भी रहे हैं सब जगह उसको? ये ऐसी ही है, कितना भी समझाओ कुछ होने वाला नहीं है, मत जाओ उसके पास समझाने। निगेटिव बहुत अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के रखा है। तो ये तीनों ही चीजों को हटाना है। अगला है प्रकृति। जब हम पावन बन जाएंगे तो प्रकृति स्वतः ही पावन हो जाएगी। एक छोटा सा अनुभव है और बहुत सुंदर अनुभव है। 2 मास पहले जब विजया बहन जी ने हमको फोन किया था कि यहां भट्टी के लिए आई है, तो हमने कहा था ठीक है। तो उन्होंने कहा था कब आ सकते हैं, हमने कहा अप्रैल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं यहां बहुत धूप रहती है। तो अप्रैल तो 7 तारीख का निश्चित हुआ था, बाद में पता चला 7 तारीख को भी नहीं हो सकता है, थोड़ा बाद में मई में। तो हमको पता चला, हमने पूछा पर वो भाई बहने कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा उनको तो आदत है, आप निश्चिंत रहो, तो आपको हम अलग से रख देंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 मास पहले की बात है। तो हमने एक प्रयोग किया, रोज अमृत वेला, उसी दिन से हमको नहीं लगता है एक भी दिन मिस हुआ होगा। उस दिन से जब अमृत वेला हमने सकाश थी प्रकृति की, तो इस हमको तो ये भी नहीं पता था ऐसा कोई रिट्रीट है, हमको लगा सेंटर पर जाना है किसी, ये तो अभी अभी पता चला कुछ दिनों पहले, कुछ 15 दिन पहले शायद। तो हमने एक प्रयोग किया कि फरिश्ते स्वरूप में वहां जाना और वहां पर यहां की प्रकृति को वाइब्रेशंस देना, और एक संकल्प लिया कि जैसे हम यहां आएंगे, जिस दिन अपने साथ बारिश को ही लेकर आएंगे, जिस दिन हम यहां कदम रखेंगे, हम अकेले नहीं होंगे, चाहे कितनी भी धूप हो, क्योंकि यदि यहां जाना है तो वहां का वातावरण हम बदल के रहेंगे। और पिछले 1 हफ्ते पहले आने से पहले यह अनुभव इतना हमको स्पष्ट हो गया, इतना स्पष्ट हो गया कि यह ऐसा ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम हैदराबाद पहुंचे, बहुत धूप, राहुल भाई लेने आए थे, तो बीच में तो हम सो गए, तो जब उठे तो उन्होंने कहा थोड़ी बारिश आई थी, हमने हाथ बाहर किया तो लगा बीच बीच में, पर देखा तो दिख नहीं रहे थे कोई, मतलब वो बूंद नहीं दिख रही थी बारिश की। और फिर थोड़ी देर के बाद जोर से बारिश आने लगी और यहां पहुंचे तो बारिश थी। तो ये एक छोटा सा एक अनुभव है। वैसे तो बाबा ही मदद करता है और प्रकृति की जितनी हम सेवा करेंगे, इसके लिए उस दिन भी कहा था, आज सुबह कौन कौन थे अमृत वेला, आज भी प्रकृति की भी, कल भी हमने सकाश दी थी प्रकृति को, तो रोज इस प्रकृति की सेवा करनी, हम प्रकृति पति है, जहां हम जाए हम अकेले ना जाए, बाहर हमारे साथ साथ। तो प्रकृति को भी पावन, तो संपूर्ण परिवार था पवित्रता अर्थात स्वयं में सुख शांति का अनुभव, दूसरा दूसरों को सुख शांति का अनुभव, तीसरा प्रकृति को भी सकाश। तो ये है संपूर्ण पवित्रता। बाकी बाबा ने बाद में ग्रुप से मुलाकात की है रूहे गुलाब, उसमें चार मुख्य बातें हैं। पहली, रूहे गुलाब अर्थात रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। इन चार बातों को याद रखना, बहुत सिंपल है। पहली, रूहे गुलाब अर्थात रूहानियत की खुशबू फैलाना, कल भी हमने देखा था फूल अर्थात रूहे गुलाब। दूसरा, रूहों का जो मालिक है उससे रूह रूहान, रूहों का जो मालिक है सुप्रीम रूह जो है उससे बात करना। ये अभ्यास सरलता है इसमें, कैसे बात करेंगे उससे? रुको, पहले माताओं से पूछते हैं, कैसे बात करते हो बाबा से? कौन सी माता बताएंगे? बोलो क्या क्या बोलते हो बाबा को, क्या रूहान करेंगे बाबा से? अपनी भाषा में बताओ, चलो हिंदी में मत बताओ, हम इधर से ट्रांसलेट कर लेंगे। कौन सी, क्या रूहान करते हो बाबा से? अच्छा, बाबा कौन सी भाषा समझता है? हाँ, कौन सी भाषा समझता है? यदि बाबा के सामने 10 लोग हैं, एक तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, स्पैनिश, डच, फ्रेंच, और 10 के 10 बच्चे बाबा से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाबा तक कौन सी भाषा जा रही है? भावना की भाषा। मन की भाषा, भावना की भाषा। शब्द बाबा तक नहीं जाते, वाइब्रेशंस जाते हैं। परमधाम में शब्द थोड़ी है, वो निर्वाण धाम है। शब्द नहीं है, स्वर नहीं है, भाषा नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर। वहां पर शब्द रहित निशब्दता है, निस्तब्धता है और निशब्दता है। निस्तब्ध है वहां पर एकदम शांत और निशब्द, निस्वर। शब्द नहीं, बोल नहीं, स्वर नहीं, साउंड नहीं, नॉइस नहीं, वार्तालाप नहीं, आलाप नहीं, निर्वाण है। इसलिए उससे रूहान करनी है, बातें करनी है। कैसी बातें करेंगे? जो चाहे वो बात कर सकते हैं, जिस संबंध में चाहे उस संबंध से बात कर सकते हैं। एक पादरी था, प्रिस्ट, वो भगवान से बातें करता था। एक 2 साल पहले यहां पर अकाल पड़ा, मैंने कितनी प्रार्थना की तुमसे कि बारिश लाओ, पर बारिश तुमने नहीं लाई। 1 साल से यहां पर इतनी धूप हो रही है, बारिश नहीं है, खाने को नहीं है, पर तुमने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, मैं तुम्हें माफ करता हूं। ऐसे बात करता था भगवान से। भगवान को कोई भी भाषा का बंधन नहीं है, वहां पर प्रेम भाव और भावना को देखता है। फटाफट कुछ कर लिया बिना भावना के, वो उसे पसंद नहीं है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराही, अभी अंतर मल कबहु न जाई। उसे भावना प्रिय है, उसे स्वच्छ हृदय प्रिय है। विभीषण रावण राम की शरण में आता है, सब लोग कहते हैं इसको मत लेना, ये रावण का दूत हो सकता है, ये रावण की कोई चाल है, बिल्कुल इसको मत लेना इधर। परंतु राम उसको लेते हैं, क्यों? क्योंकि शुद्ध भावना से आया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे प्रसिद्ध चौपाई है रामायण की, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन प्रिय है। जिसका हृदय शुद्ध है वो मुझे प्रिय है, मोहि कपट मुझे प्रिय नहीं है। जो छल कपट करता है, मोहि कपट छल छिद्र, छिद्र अर्थात दूसरों का दोष देखना, छिद्रान्वेषण करना, फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडर्स मुझे पसंद नहीं है। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट ने कहा है धन्य है वो, धन्य भागी है वो जो पवित्र है, केवल प्रभु का दर्शन उनको ही होगा, जिसका हृदय शुद्ध है, विशुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, ऐसे प्रांजल हृदय में ही प्रभु का निवास है। तो उससे रूह रिहान करना, तीसरा रूहों को देखना, देह को नहीं देखना, रूहानी गुलाब अर्थात रूहों को देखने वाले, देह को नहीं, और चौथा एक को याद करना। ये चार बातें यहां बताई है बाबा ने। फिर प्रश्न उत्तर है, बहुत सारे जस्टिस के बारे में पूछा है, चीफ जस्टिस या कहो तुम जस्टिस हो, उसका यथार्थ जजमेंट तुम दोगे कैसे, उसका आधार क्या बताया, यदि तुम कैसे हो, कैसे हो, कौन दे सकता है, कुछ बातें बताई है वहां पर, परखने की शक्ति और और क्या, बुद्धि का काटा एकाग्र जब होगा तभी हो सकता है, बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी तभी यह हो सकता है, कर्म और बोल में लव और लाश, शक्ति और प्रेम का बैलेंस हो तब यह हो सकता है। बुद्धि का काटा एकाग्र, जैसे तराजू होता है एकाग्र होता है, ऐसी बुद्धि एकाग्र हो। और बुद्धि की एकाग्रता का भी आधार प्रश्न नंबर दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या, और इच्छा मात्रम अविद्या बनने का भी आधार तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, बीच में एक दूसरा अलग प्रश्न आ गया। तीन स्टेजेस बाबा ने यहां बताई है, इच्छा मात्रम अविद्या मतलब कोई इच्छा ना हो, उसका आधार चार बातें बताई है वहां पर, युक्त युक्त जो हमने सुबह अमृत वेला योग किया था उसमें ये वरदान बाबा से लिए थे चार, युक्त युक्त भव, सफलता मूर्त भव। अगर खुद ही संकल्पों में सफल नहीं तो दूसरों को कैसे सफल कर सकते हैं, हमारे संकल्पों का प्रयोग करना है, संकल्पों का एक्सपेरिमेंट, जैसे हम यहां से जा रहे हैं और हमारी ट्रेन है, हम लेट हो रहे हैं, संकल्प करना कि मैं जब ट्रेन में बैठूंगा उसके बाद ही ट्रेन चालू होगी, यह है एक्सपेरिमेंट विथ थॉट्स, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे, चाहे प्रकृति के साथ या अपने साथ, अपने एक्सपेरिमेंट थॉट और उसका क्या परिणाम हुआ, जरूरी हर बार सफल होंगे परंतु प्रयत्न करते रहना। तो युक्ति युक्त, सफलता मूर्त, तीसरा तीसरा क्या, तीसरा प्रश्न नंबर चार, सबने मुरली सुनी है याद रखनी है, संपन्न, तीसरा है संपन्न, युक्तियुक्त, सफलता मूर्त, और एक चीज है, एक और है, नॉलेजफुल। ये चार चीजें अगर है तो इच्छा मात्रम अविद्या, इन चारों में से एक है संपन्न, अगर संपन्न है तो ही इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अर्थात इच्छाओं का ज्ञान ही नहीं, इच्छा है तो समाप्त हो गई है क्योंकि संपन्न हो गए हैं। तो संपन्नता, इच्छा मात्रम अविद्या, बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि का काटा स्थिर, और उसके बाद है फिर जजमेंट एक्यूरेट, यथार्थ, हमारे जजमेंट गलत हो जाते हैं दूसरों के बारे में, उसका भी ये कारण है क्योंकि संपन्नता नहीं है, सफलता मूर्त नहीं है, युक्ति युक्त हम नहीं है, वो सुबह वाला युक्ति युक्त नहीं, वो भी युक्ति युक्ति है एक। तो चार चीजें ये और ये, एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, यदि वो जो जज है उसने अगर गलत निर्णय दे दिया तो क्या हो जाता है, किसी का पूरा जीवन समाप्त, एक जन्म, उसमें तीन चीजें बताई फिर भी, एक तो पूरा जीवन, दूसरा बहुत समय, और तीसरा नुकसान, और यदि तुमने गलत जजमेंट दे दिया तो तकदीर अनेक जन्मों की, हमने स्टैंप लगा दिया है कि ये बिल्कुल बदलेगी नहीं आत्मा, जो करना है कर लो, ये कभी भी ज्ञान में नहीं आई आएगी, अब है वो देवी देवता कुल की और हम इधर उसके स्टैंप लगा रहे हैं कि इसके स्वभाव ऐसा है कि ये कभी भी ज्ञान में नहीं आ सकती, इसको भगवान कभी मिलेगा ही नहीं, हम जज कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और हम भी कोई साधारण आत्माएं नहीं है, हम भी ब्राह्मण हैं, और हमारे शब्द जो है वो सत्य भी हो सकते हैं। इसके लिए किसी को भी शापित नहीं करना है। हम कौन है शापित करने वाले? किसी को शाप देना हमारा कर्तव्य है या वरदानी है? हम कोई कितना भी पाप करे, क्या हम उसे शाप देंगे? कल रात में बताया था, क्षमा करना, क्यों क्षमा करनी है हमें? एक कारण, सबसे अंतिम कारण, क्योंकि यह भगवान की आज्ञा है। क्या उल्लंघन करोगे उसकी आज्ञा का? एक साधु था लंदन में, उसको एक अपराध के लिए 22 साल जेल में डाल दिया। 18 साल जब पूरे हुए तो पता चला जो मर्डर उसने किया ही नहीं था, वो दूसरा पकड़ा गया। उसने कबूल कर लिया कि मैंने किया है, तो कोर्ट ने कहा साधु को अभी छोड़ दिया। उसने कहा मैं यही ठीक हूं, अभी मेरी अच्छी यही साधना हो रही है। कोई क्रोध का भाव नहीं। और उसने और एक चीज कह दी, ये मेरे ही किसी पूर्व जन्म का पाप कर्म था, नहीं तो इस जीवन में तो मच्छर भी नहीं मारा है, और आप बात कर रहे हो मर्डर। परंतु फिर भी परिस्थिति हो गई। इस अर्थात क्या? जरूर किसी और जन्म का पाप है। कृष्ण निंदा घड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। इस जन्म में महार क्यों बना? संत लिखता है शायद किसी जन्म में कृष्ण निंदा की दी होगी। उम्भरट्यासी कैसे शिव, आम ही जाति ही न, रूप तुझे कैसे पाहू, त्यात आम ही दीन। ये पंडित लोग आने नहीं देते, कृष्ण का दर्शन नहीं करने देते, परंतु भक्त तो उसमें भी खुश है। पायरीशी हो दंग गाउनी अभंग, नाथा घरी नाचे माजा सखा पांडुरंग। उसमें भी वो खुश है, कंप्लेंट नहीं है किसी के प्रति, क्योंकि अपना ही पाप है। तो अभी सभी ने मुरली एक बार फिर पढ़नी है, ठीक है? अभी तो यहां सुना दी, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है।